السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين. برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، اور دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا ہے. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. ایک ہے عرش اور ایک ہے فرش. عرش کا مطلب وہ ہے جو سب سے اونچا بلند و بالا مقام ہے، جس کو عرش الہی کہتے ہیں. عرش کے معنی تخت کے ہیں. اللہ تعالی نے اپنی تجلیوں کا مرکز سب سے اونچا جو آسمان ہے اس کو بنایا ہے, جس کا نام ہے عرش الہی, یعنی اللہ کا یہ تخت ہے. اللہ تخت سے بے نیاز ہے, وہ بیٹھتا نہیں, لیکن اس کی تجلیات کا جو سب سے بڑا سینٹر ہے, جہاں سے پوری کائنات کو اللہ تعالی خیر و برکت عطا فرماتا ہے, جہاں سے ساری کائنات کو اپنی رحمت کا نور عطا فرماتا ہے, وہ جگہ عرش ہے, اور فرش وہ ہے جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, جس کو زمین کہتے ہیں. اعلی حضرت فرماتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا گزر, آپ کی پہنچ عرش کے اوپر ہے, سر عرش عرش کے اوپر ہے, سر عرش پر ہے تیری گزر, مصطفیٰ کی گزر اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچ عرش کے اوپر ہے. یہ عرش کے اوپر کسی کی گزر نہیں, کسی کی پہنچ نہیں, جبریل امین بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے. فرشتوں میں سب سے بڑی شخصیت حضرت جبریل امین کی ہے, اور اللہ تعالی نے ان کے رہنے کے لیے جو مقام بنایا ہے وہ سدرۃ المنتہا, دنیا کے مقامات میں سے جو آخری حصہ ہے جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں, ایک نور کا درخت ہے جس کو ہم لوگ سدرا کو کہتے ہیں, بیری بور, اس کا ایک نورانی درخت ہے جہاں حضرت جبریل امین رہتے ہیں, اس سے اوپر کسی کی گزرگاہ نہیں ہے, یہ جبریل کے رہنے کی جگہ ہے, اور اس سے ہزاروں لاکھوں میل اوپر عرش الہی ہے. عرش الہی پر جبریل بھی نہیں جا سکتے, لیکن میرے رسول آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکی گزرگاہ وہ بھی ہے, سر عرش پر ہے تیری گزر. مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اللہ تعالی نے عرش کے اوپر بلایا تھا, جبریل بھی جہاں جانے سے رک گئے تھے, سدرہ پر ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے تھے, اور رسول نے فرمایا, جبریل ہم اور تم دونوں دوست ہیں, مکے سے چلے ہم دونوں دوست ساتھ ساتھ چلے, چودر دوستی مخلصم یافتی, انانم سے صحبت چہرہ کافتی. اے جبریل وہاں سے ہم دونوں دوست کی طرح سدرہ تک آئے ہیں, یہاں کیوں رک رہے ہو؟ انانم سے صحبت چہرہ کافتی, میرے ساتھ چلنے سے اپنی لگام کو کیوں روک رہے ہو, آگے چلو. تو جبریل نے کہا, اگر یکسرے منہ برتر پرم, فروغ تجلا بسوزت پرم, اگر بال کی نوک کے برابر بھی میں آگے سرکا, آگے چلا, تو اللہ کی تجلی کا جلال میرے بازوؤں کو اور میرے پروں کو جلا کر خاک کر دے گا. یہ وہ مقام ہے, سدرہ کے بعد کوئی جا نہیں سکتا, اور اگر کسی نے جانے کی جرات کی ہے تو اس کا وجود جل کر خاک ہو جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ اوپر جانا اپنے وجود کو جلا دینا ہے, جبریل جو نور کے بنے ہوئے ہیں وہ वो नहीं बच सकते और मैं तो मिट्टी का बना हुआ हूं। ये हुजूर ने ऐसा फरमाया क्या? जिब्रील तुम नूर के हो, जब तुम जल जाओगे मैं तो मिट्टी का हूं। हुजूर ने ये नहीं फरमाया मैं मिट्टी का हूं जैसे कि बदअकीदों का ख्याल है। हुजूर तो उस नूर से बने हैं जिस नूर की तजल्ली से जिब्रील बने। हुजूर जानते हैं जिब्रील मेरे नूर की तजल्ली और चमक से बने हैं और मैं तो असले नूर हूं, तू है ऐने नूर। आला हजरत फरमाते हैं मुस्तफा का नूर ऐन है, हकीकत है। फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वलो मा खलक अल्लाह मिन नूरी मिन नूर ही, रब ने सबसे पहले मेरे नूर को खास अपने नूर से बनाया और कुल्लुल खलाइक मिन नूरी, और फिर पूरी कायनात को मेरे नूर की तजल्ली से बना दिया है। जिब्रील भी नूरे मुस्तफा की तजल्ली से बने। ये नहीं फरमाया कि तुम नूर वाले जल जाओगे तो मैं मिट्टी वाला कैसे बचूंगा। हुजूर ने हमें अकीदा दिया कि नूर जिब्रील है और मेरे नूर से ये बने हैं इसलिए रुक गए, और मेरा वो नूर है इसे कोई नहीं रोक सकता है, मैं अल्लाह के नूर से बना हुआ। हजरत जिब्रील अमीन रुक गए। हुजूर ने यह नहीं फरमाया जिब्रील जब तुमको मालूम है कि ऊपर बड़े खतरात हैं तो मुझे ला करके उस खतरे में क्यों भेज रहे हो, नहीं बल्कि दुनिया को ये बता रहे हैं मैंने जिब्रील से पूछा। जिब्रील बताते हैं मैं आगे नहीं जा सकता, लेकिन मैंने जिब्रील के इस कहने पर भी अपने आप को वहां रोक कर नहीं रखा, बल्कि रब इरशाद फरमाता है उदनो या मोहम्मद उदनो अकरा उदनो या मोहम्मद उदनो या मुमज्जद, ऐ मोहम्मद आगे बढ़े आओ, ऐ मुमज्जद ऐ बुजुर्गी वाले आगे बढ़ो। जिब्रील रुक गए, तुम्हारे लिए रास्ता साफ है। आला हजरत फरमाते हैं सरे अर्श पर है तेरी गुजर, अर्श इलाही पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, बारगाह खुदावंदी में हाजिरी दी और अपनी आंखों से रब को देखा, और रब को जब देखा तो आंखों में जरा भी कजी पैदा नहीं हुई, आंख की पलकें झिपकी नहीं। कुरान फरमाता है मा ज़ागल बशर वमा तगा, जब रब का जलवा महबूब तुमने देखा तो मा ज़ागल बशर आपकी आंखें टेढ़ी नहीं हुई, आपकी आंखों में झिपक पैदा नहीं हुई, आंखें खोलकर रब का जलवा देख रहे हैं। और रब के जलवा देखने का फायदा क्या है? आप किसी का मकान देखें सिर्फ इतना ही है कि ये मकान ऐसा है, किसी की शख्सियत को देखें ये आदमी गोरा है कि काला है, आपकी आंखों को कोई फायदा नहीं होता। बल्कि अगर सूरज को देख ले तो आंख को नुकसान पहुंचता है, थोड़ी देर तक के लिए आंखों के सामने जिधर जिधर देखो तो अंधेरा गोल गोल नजर आए। देखा है कभी सूरज की तरफ थोड़ी देर नजर गई तो नीचे अंधेरा, चमक दमक वाली चीज को देख करके आंख झिपक जाती है, आंख को नुकसान पहुंचता है। ये तो दुनिया के सूरज की बात कर रहा हूं, वो रब्बुल आलमीन जिसकी चमक दमक कोई नहीं देख सकता। मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर अर्ज किया था रब्बे अरनी अंजुर इलैक, ए रब मुझे अपना जलवा दिखा दे, मैं देखने के लिए तैयार हूं। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि लन तरानी, ए मूसा तुम हरगिज नहीं देख सकते, جب اللہ تعالیٰ کے جلوے کو موسیٰ پیغمبر نہیں دیکھ سکتے تو کیا تم سب دیکھ سکتے ہو؟ امپوسیبل. انبیاء بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. اب کون دیکھے گا؟ سید الانبیاء دیکھنے کے لیے کسی پہاڑ پر نہیں گئے, سر عرش پر ہے تیری بنا, عرش کے اوپر رب نے بلایا. محبوب آپ بڑی طاقت والے ہیں, آپ مجھے دیکھ کر کے چلے جائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا, اے موسیٰ پہاڑ کو دیکھو, میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں, اگر پہاڑ اپنی جگہ پر رکا رہا تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو. رب فرماتا ہے, فتجلا رب للجبل فجعله دكا وخر موسى صعقا. رب نے سوئی کے ناکے کے برابر اپنے جلوے کی چمک پہاڑ پر ڈالی. کتنی؟ سوئی کے ناکے نوک کے برابر. جب پہاڑ پر رب کی تجلی پڑی, قرآن فرماتا ہے, فجعله دكا, پورا پہاڑ چور چور ہو گیا, جل گیا پہاڑ, پتھر جل گیا. کتنی گرمی تھی, کتنا بڑا دھماکہ تھا, پہاڑ کی کلچیاں اڑ گئیں, پہاڑ ہواؤں نے اس طرح سے اس کے چٹانے اڑ رہی تھی جیسے کہ کہیں ڈائنامائٹ لگا کر کے اور پہاڑ میں سوراخ کر دیا گیا. ایک تجلی کا وہ دھماکہ اور وہ زور کہ پورا پہاڑ جل گیا. وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا, اور موسیٰ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے. موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں وہ تاب نہ تھی کہ رب کی تجلی سوئی کے ناکے کے برابر دیکھ سکے. اب مصطفیٰ کی آنکھ کی توانائی اور انرجی دیکھو, پہاڑ پر نہیں عرش کے اوپر, جو اللہ کی تجلی کا مرکز ہے, رب کی تجلی کو دیکھ رہے. دیکھنے سے فائدہ کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ سے پوچھو. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جس دن سے اللہ کی تجلی دیکھی تو میری آنکھوں میں اتنی طاقت, دیکھنے کی قوت پیدا ہو گئی کہ 40 میل 80 فرسم کی دوری پر کالی چٹان پر کالی چونٹی کو کالی رات میں 40 میل سے رینگنے کو دیکھ لیا کرتا. فی لیلت سودا الا صخرت السودا نملت السودا. فرماتے ہیں کالی چٹان پر کالی چیونٹی کو کالی رات میں 80 فرسنگ یعنی 40 میل کے فاصلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام چیونٹی کے چلنے کو دیکھ لیتے ہیں. یہ رب کی تجلی جو سوئی کے ناکے کے برابر ہوئی, وہ بھی جی بھر کر نہیں دیکھا. تجلی ہوئی, پہاڑ لرزا, چور چور ہو گیا, اور ایک نظر جناب موسیٰ کی پڑی, ہوش اڑ گئے, زمین پر گر گئے, غش کھا گئے کلیم, مگر ہنس پڑے حبیب. اتنی دوری پر سوئی کے ناکے کے برابر تجلی دیکھ کر فوراً غش کھا کے زمین پر گر گئے, قرآن فرماتا. لیکن مصطفیٰ کو غش نہیں آیا, ما زاغ البصر, آنکھ جھپکی تک نہیں, آنکھ میں ٹیڑھا پن بھی نہیں پیدا ہوا. کہاں دیکھ رہے ہیں؟ سرے عرش پر ہے تیری, عرش الہی پر کھڑے ہو کر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مسکرا مسکرا کر. غش کھا گئے کلیم, مگر ہنس پڑے حبیب. आंखें बदल गई तो नजारा बदल गया। नजारा तो तजल्ली ही का था, लेकिन वो नजारा आंखें बदली तो देखने का अंदाज बदल गया। अल्लाह की तजल्ली मूसा भी देख रहे थे अलैहिस्सलाम, और अल्लाह के रसूल मुस्तफा भी देख रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ आंख बदली थी, तजल्ली वही देख, ये बश खा गए। मूसा बश खा के जमीन पर गिरे और मेरे रसूल मुस्कुरा पड़े। बश खा गए कलीम मगर हंस पड़े हबीब, आंखें बदल गई तो नजारा बदल गया। हजरत मूसा की आंख की ये कुव्वत सब किताबों में आपको मिलेगी, और जिसने अल्लाह की जाते बहत की तजल्ली देखी हो और करीब से देखी हो। कितने करीब से? कुरान से पूछो तो कुरान फरमाता है दना फतदल्ला फका पऊ सईन अऊ अदना। अल्लाह की तजल्ली से मुस्तफा करीब हुए और ज्यादा करीब हुए, इतना करीब हुए कि दो कमानों के चिल्ले मिलने में जो फासला रहता है उससे भी ज्यादा करीब हुए। इतने करीब हुए कि उस पूर्व को हम समझ नहीं सकते, और ऐसे करीब हो करके तजल्लिए जाते इलाही को आका मौला देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। मा ज़ादल बशर वमा तबा। फिर हुजूर की आंख के बारे में मैं सब मुसलमानों सुन्नियों से पूछता हूँ, कितनी कुव्वत पैदा हो गई। हजरत मूसा ने करोड़ों मील के फासले पर सुई के नाके के बराबर एक चमक हुई, वो भी जी भरकर नहीं देखा, देखा जमीन पर गिर पड़े। इतने देखने के अरसे का ये आंख को फायदा हुआ कि 80 फरसख की दूरी पर काली रात में काली चींटी को काले पत्थर पर रेंगने को देख रहे थे। फिर मेरे मुस्तफा क्या क्या देख रहे हो? आपकी आंखों की तजल्ली का ये आलम। आगे फरमाते हैं सरे अर्श पर है तेरी गुजर और दिले फर्श पर है तेरी नजर। ये जमीन का जो दिल है आखिरी हिस्सा है, हुजूर देखते हैं तो दिले फर्श पर आपकी निगाह जाती है। इस जमीन के अंदर क्या क्या हो रहा है सब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म है। रहते हैं मदीने में और जमीन के सातों परत को सातों तबकों का अपनी आंखों से नजारा फरमाते हैं। तो हुजूर की शान ये है कि सरे अर्श पर है तेरी गुजर और दिले फर्श पर है तेरी नजर। इसी वजह है कि जहां कहीं आप दफन किए जाएंगे, कितने भी गड्ढे में दफन किए जाओ, मदीने वाले आका अपनी जगह बैठ करके देख लेते हैं मेरा गुलाम कहां दफन है। उन्हें रास्ता पूछने की जरूरत नहीं, हर वक्त सारी जमीन के ऊपर को जमीन के अंदर को दिले फर्श को अपनी निगाहों से हर वक्त देख रहे हैं। उनको रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है कि सूरत का कब्रस्तान किधर है ऐ फरिश्तों बताओ, इसकी जरूरत नहीं है। दफन हुए वहां मुस्तफा तशरीफ लाए। क्या नसीब है तुम्हारा मेरे दोस्तों, आप सूरत में हर वक्त साइकिल लेकर मोटरसाइकिल लेकर घूमते रहे तो आपको रोड पूछने की जरूरत पड़ेगी, गली कूचे पूछने की जरूरत पड़ेगी। हम चूंकि सूरत के नहीं है, सूरत देखा नहीं, मौलाना यहीं पैदा हुए, तो हमको इनको साथ लेकर के मीठी खाड़ी जाए तो कौन से रास्ते से ये बताए, वहां से रानी तालाब आए तो कौन बताए ये बताए, चौक बाजार जाए तो उस गली से जाए कि इस गली से जाए ये बताए। 40 साल 42 साल मुझे रास्ता नहीं मालूम, मेरी निगाहों के सामने पूरे सूरत के रास्ते नहीं है, लेकिन मेरे आका मौला को रब ने पूरी दुनिया को इस तरह पेश कर दिया है जैसे वो हाथ की हथेली को देख रहे हैं। सरकार फरमाते दुनिया वह अना अनजरो कमा अनजरो अल्लाह ने ये पूरी दुनिया उलट पलट के नीचे ऊपर सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर। अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं लोगो मुझे अपने जैसा मत समझना, मेरी आंख का वो कमाल है कि मैं सारी दुनिया को हथेली की तरह कयामत तक देखता रहूं। फिर हुजूर को रास्ता पूछने की क्या जरूरत है, आप कब्र में गए मुस्तफा आ गए। अगर ईमान सलामत है तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देख करके खुद पहचान लेंगे। नए आदमी को कोई देखते ही पहचानता, मुस्तफा तो कभी आपकी निगाह के सामने नहीं आए या रसूल अल्लाह कभी ख्वाब में सबको अपना जलवा।
आमीन आमीन।
लेकिन हमने देखा हो नहीं देखा हो हुजूर आएंगे फौरन पहचान लेंगे, अरे ये तो वही है कि मिलादुन नबी में या नबी सलाम अलैका हम इन्हीं को तो कहते थे, यही वो आका है जो महशर में शफाअत करेंगे। मुनकर नकीर पूछेंगे कौन है, तो मोमिन झिझकेगा नहीं, फौरन कहेगा हाजा नबीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे आका और मौला नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अरे मुस्तफा को देखा नहीं पहचानोगे कैसे, ये ईमान सलामत है अकीदा सलामत है, किसी को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ईमान खुद पहचान लेगा कि ये आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में पूरी जमीन है, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। और ये कहने के बाद अब उसका नतीजा निकालते हैं दूसरे शेर में, मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया है। अर्श देखा तो वो है मलकूत, और मुल्क ये जमीन, दो हिस्से हैं आलमे बाला और आलमे असफल। आलमे बाला जहां फरिश्तों की दुनिया है, अर्श के नीचे फरिश्ते ही फरिश्ते, फरिश्ते ही फरिश्ते, मलकूत के माने फरिश्ते। वो दुनिया इंसानों की दुनिया से करोड़ों लंबी चौड़ी दुनिया, और फरिश्तों की संख्या और तादाद इंसानों की तादाद के मुकाबले में करोड़ों गुना नहीं है, अरबों गुना संघ महासंघ गुना से ज्यादा फरिश्ते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्श को देखा तो आलमे मलकूत को अपनी निगाहों से देखा, और दुनिया में सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत ओ मुल्क, मलकूत में और इस मुल्क में कोई ऐसी शय नहीं बची है जो मुस्तफा की निगाहों के सामने आया नहीं है, सब आया है, सब जाहिर व बाहिर है, ऐसे देख रहे हैं, आगे को भी देख रहे हैं, पीछे को देख रहे हैं। एक मर्तबा आप नमाज पढ़ा रहे थे, एक सहाबी जल्दी जल्दी रुकू सजदा कर रहे थे, अभी इमाम ने सर नहीं उठाया ये उठ जाते थे, अभी इमाम सजदे में नहीं गया ये पहले चले जाते थे। जैसे हुजूर ने सलाम फेरा तो इरशाद फरमाया पीछे मुड़कर, अतिमु रुकूअकुम व सुजूदकुम, सुभान अल्लाह, ऐ मेरे पीछे नमाज पढ़ने वालों सावधान, अपने रुकू और सजदे को पूरा करो जैसा मुझे देखते हो वैसे। अपनी मर्जी से सजदे और रुकू मत करो, इरशाद फरमाते हैं ऐ फला पीछे मुड़कर। पहले तो फरमाया कि तुम सब अपने रुकू और सजदे को अच्छी तरह अदा करो, फिर आखिरी सफ में हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं वो आदमी था जिसने गड़बड़ किया था, उसका नाम लेकर फरमाते हैं इस तरह नमाज मत पढ़ो, ऐसे ऐसे पढ़ो। इसलिए हुजूर फरमाते हैं जैसे मैं अपने आगे देखता हूँ सुन लो तो मैं अपने पीछे भी वैसे ही देखता हूँ। ये मेरे मुस्तफा की शान है, तुम सिर्फ आगे देखते हो, मेरे रसूल पूरी कायनात को दाएं बाएं आगे पीछे सब देखते हैं। आला हजरत एक जगह फरमाते हैं शस जहत सम के मुकाबिल शबो रोज एक ही हाल, धूम व नग्न में है आपकी बिनाई की। फरमाते हैं शस जहत छह दिशाएं नीचे ऊपर दो दिशा हो गई, आगे पीछे चार, दाएं बाएं छह, ये छह दिशाएं हैं पूरी कायनात को जो घेरे हुए। इन दिशाओं से कोई बाहर नहीं है, सब इसी के अंदर है। आला हज़रत फरमाते हैं शस जहत सम के मुकाबिल, ये छह दिशाएं जो हैं हुजूर की निगाहों के सामने हमेशा रहती, तुम्हारे पीछे की दिशा आंखों के सामने नहीं है, दाएं बाएं आंख के सामने नहीं है, मुकाबिल में जो है वही आंख के सामने है। हमारी निगाह का आलम और है, सरवरे कायनात की निगाहों का आलम और है। शश जहत सम्त मुकाबिल शब और रोज एक ही हाल। आप पूछेंगे छह दिशाएं एक ही सम्त में कैसे आ गई, इसी का नाम है तो मौजजा। ये हुजूर का मौजजा है, सर घुमाने की जरूरत नहीं थी, पीछे क्या हो रहा है देख रहे हैं, दाएं क्या हो रहा है देख रहे हैं, बाएं क्या हो रहा है देख रहे हैं। इसकी एक टूटी फूटी मिसाल ये है कि ट्रक चलाने वाला, फोर व्हीलर चलाने वाला आजकल एक कैमरा सामने लगा था। पहले जमाने में दो आईने लगे रहते, ड्राइवर चलाता था पीछे देखता था कि नहीं, क्यों देखता था? आप कहेंगे मिरर लगा है, मिरर में देखता तो था, आजकल कैमरा है, मिरर की जरूरत नहीं, सामने कैमरा है, रिवर्स गियर में लगाया, उसके झांकने की जरूरत नहीं, कैमरे में देख रहा है कौन आ रहा है, कितने दूर पर है, साइकिल से आ रहा है कि टू व्हीलर से आ रहा है। ये कैमरा वो ही याद है जो दाएं भी दिखाता है, बाएं भी दिखाता है, आगे भी दिखाता है, पीछे भी दिखाता है, नीचे क्या है सड़क पर वो भी, ऊपर क्या है वो भी, छह दिशाओं को कैमरा कैच करता है। ए मेरे दोस्तों, जब साइंस ने कैमरा छह दिशाओं में इसको कैद कर दिया है छह दिशाओं को, तो मुस्तफा की निगाह का क्या आलम होगा? ये कैमरा 10 मीटर फासले पर लोगों को दिखाता है, लेकिन मेरे मुस्तफा अपनी आंखों के सामने रब की तजल्ली का कैमरा देख रहे थे, उन्हें आगे पीछे सब एक समझ शब्द में सिमट करके आ गए थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मौजूदा शस जहत सब के मुकाबिल शबो रोज एक ही हाल, धूम व नग्न में है आपकी बिनाई की, वन नग्न इजा हवा मा बल्ला साहिबकुम व मा गबा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये निगाहों का मौजजा था। उसकी वजह है कि जमीन का जो दिल और सेंटर है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह के हमेशा सामने रहता था। سرے عرش پر ہے تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ علم ہے. تو آپ یہ مت سمجھو کہ حضور مدینے میں ہمارے دل کے خیالات کو نہیں جانتے. بڑے ساودھان رہنا, اگر یہاں تم نبی کی محبت لے کر بیٹھے ہو, دل میں عشق مصطفیٰ لے کر بیٹھے ہو, میں نے اگر مگر بیکار کہا, یقیناً تم دل میں رسول کی محبت ہی لے کر آئے ہو. اگر مگر کی ضرورت نہیں ہے, اگر محبت نہ ہوتی تو آتے کیوں؟ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کی محبت آپ کے دلوں میں موجود ہے اور نگاہ مصطفیٰ کے سامنے ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ تو اپنی جگہ ہے, حضرت عمر فاروق کی نگاہ کو دیکھو, کیچنگ پاور دیکھو. جمعہ کا دن ہے, 350 میل کے فاصلے پر اسلامی لشکر حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کمانڈری میں کفار سے جنگ کر رہے تھے. حضرت عمر فاروق جمعے کے خطبے کے لیے منبر رسول پر مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں اور وہاں سے نہاوند آپ کی پیٹھ کے پیچھے تھا. 300 میل, 350 میل کے فاصلے پر وہ ملک ہے. حضرت عمر فاروق خطبہ دیتے دیتے چونک گئے اور وہیں سے خطبہ چھوڑ کر فرماتے ہیں, یا ساریہ الجبل, یا ساریہ الجبل, یا ساریہ الجبل, اے ساریہ ساودھان پیچھے مڑ کر دیکھو, اے ساریہ پیچھے مڑ کر دیکھو. حضرت ساریہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کافروں کا لشکر کا ایک حصہ چھپ چھپا کر پہاڑیوں کی طرف سے اسلامی لشکر پر حملہ کرنے کی تیاری کر چکا تھا. مسلمان کا منہ ادھر, پیچھے سے فوج آئی اور قریب تھا کہ مسلمانوں کے لشکر پر کافروں کی فوج دھاوا بول دے, ٹوٹ پڑے. اگر حضرت عمر فاروق 350 میل کے فاصلے سے اپنے کمانڈر ان چیف حضرت ساریہ کو ساودھان نہ کرتے تو اسلام مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا تھا. حضرت عمر فاروق دنیا کو بتا رہے ہیں, میرے آقا کی نگاہ اپنی جگہ ہے, ان کے غلام کی نگاہ یہ ہے, خطبہ بھی پڑھ رہے ہیں پیٹھ کے پیچھے سے. سرے عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ انا نہیں. اے لوگوں, تنہائیوں میں بھی کل اگر غلط کام کرو تو یہ عقیدہ رکھ لو کہ اللہ بھی دیکھتا ہے اور رسول بھی دیکھتے ہیں. ان کی نگاہ ہر طرف تمہارا سروے کر رہی ہے. رسول کا کی حیا اور شرم رکھنی چاہیے. اسی لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں, اے گناہ کرنے والوں, شرم خدا, خوف نبی, خوف خدا, دن لہو میں کھونا تجھے اور شب صبح تک سونا تجھے. شرم نبی, خوف خدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تم صبح تک سوتے رہتے ہو, سمجھتے ہو کہ اللہ و رسول نہیں دیکھ رہے. فرماتے ہیں کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے, اس پر تو سب ایمان رکھتے ہیں, لیکن سنیوں کو یہ ایمان دے رہے ہیں, عقیدہ دے رہے ہیں. تمہارے سونے کو اور نماز ترک کرنے کو حضور کی نگاہ بھی دیکھ رہی ہے. سرکار فرماتے ہیں, اے میرے ماننے والو, نماز پڑھا کرو, قرۃ عینی فی الصلاۃ. جب تم نماز پڑھتے ہو تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. ٹھنڈک جب ملتی ہے تو سکون ہوتا ہے. ٹھنڈک سے مراد جب امتی سجدہ کرتا ہے تو مدینے میں مصطفیٰ کو بڑا बड़ी खुशी होती है, आंखों को ठंडक मिलती है। ऐ अल्लाह के बंदो, नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाते रहो, ठंडक पहुंचाते रहो। अगर तुमने ठंडक पहुंचाने का इरादा कर लिया तो यकीन जानो, जिनकी आंखों की ठंडक तुम्हारे सजदे हैं, एक दिन तुम पर नजरे करम फरमाएंगे, सारा तुम्हारा मुश्किल काम खुद ब खुद संवर जाएगा। और तुम उन्हें पुकार लो तो फिर तो तुम्हारी फरियाद ही सुन लेंगे। आधा हजरत फरमाते हैं, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान भी सुनते हैं, आंखें भी देखती हैं। तो आप अपने आप अपने दिल को संभाल कर आओ। बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो अल्लाह वाला होता है वो आंखों से तो देखता ही है, यंजुरु बिनूरिल्लाह, वो अल्लाह के नूर से तुम्हारे दिलों को देखता है। क्या सोच सोच कर आए थे, क्या क्या तुमको उसने, तुम्हारे सोच को भी अल्लाह वाला देखता। आला हजरत मलकुजार शरीफ में एक वाकया लिखते हैं कि दो सड़के हुए मौलवी, सड़के हुए समझे, स्क्रू दिमाग का थोड़ा ढीला हो गया था, और नबी के बारे में वली के बारे में उनकी सोच जो जरा एंड बेंड हो गई थी। एक जगह एक बुजुर्ग रहते थे, तो इन दोनों ने जब उनका नाम सुना, उनकी करामतें सुनी, तो ये अभी पूरे उधर गए नहीं थे, डावाडोल थे, सुलह कुल्ली टाइप थे, कहने लगे कि चलो हम भी देख के आए कैसे बुजुर्ग है। देखो, सुन्नी जाता है तो ये देखने के लिए नहीं जाता कैसे बुजुर्ग है, वो जाता है तो ये तसव्वुर लेके जाता है, अल्लाह वाला है चलो फैज लेने जाए, और ये लोग देखने जाते हैं, यही फर्क है। सुलह कुल्ली है तो देखने जाता है, और सच्चा सुन्नी है तो फैज लेने जाता है। उन दोनों ने कहा चलो देखे कैसे बुजुर्ग हैं। वो गए तो मगरिब का वक्त हो रहा था, मस्जिद में पहुंचे, वही बुजुर्ग नमाज पढ़ा रहे थे। नमाज से फारिग होने के बाद ये दोनों मौलवी साहबान आपस में गुफ्तगू करने लगे, इतने बड़े बुजुर्ग और तजवीज से कुरान भी नहीं पढ़ते, क्रिटिसाइज, उन पर एतराज उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू किया। फिर हजरत से मिले, हजरत ने बड़ी इज्जत की, इनको खाना खिलाओ, खानकाह के कमरे में बिस्तर बिछा दो, इन्हें सुला दो, ये मगरिब की, इशा की और फज्र की नमाज, तीनों नमाजें पढ़ी। और जब नमाज पढ़ के आते हैं, कैरत इनकी अच्छी नहीं है, कैसे बुजुर्ग हैं, वही एतराज था। फज्र की नमाज के बाद हजरत ने अपने खादिम से कहा, हमारे दो मेहमान आए हैं, उनके लिए नाश्ता तैयार करो। नाश्ता तैयार किया गया, उनके रूम में गए देखने के लिए तो दोनों गायब। खादिम से पूछा, मेहमान कहाँ गए? बोले, करीब में नदी है, ये गुसल करने गए। ये गुसल करने जैसे ही गए और कपड़ा उतार दिया, सिर्फ चड्डी पहन के नदी में गए, टोपी चब्बा पैजामा एक पत्थर पर उन्होंने रख दिया और नदी में जाकर नहाने लगे। सामने जंगल था, जंगल से एक शेर आया और इनके कपड़े को ऐसे ले करके बैठ गए और नदी की तरफ देख रहा। जब ये नहा करके फारिग होकर किनारे आए तो शेर इनको घूर रहा था, देखा सब कपड़े समेट कर बैठा हुआ। कम यार माई डियर सुना रहा था, बुजुर्ग पर एतराज करता, शेर भी जानता है। ये दो ने अल्लाह वाले पर एतराज क्रिटिसाइज अकेले में की थी, जंगल के शेर को पता कैसे? अरे ये जानवर भी अल्लाह वालों की मोहब्बत में इतने पावरफुल होते हैं, कमरे में बैठकर बोलो शेर को खबर हो जाती है। शेर बैठा हुआ, हजरत ने कहा अरे मेहमान कब से गए हैं गुसल करने? कहा हुजूर अभी तक नहीं आए। कहा जाओ देखो। खादिम आया तो देखा दोनों मौलाना कुरकुर कुरकुर कांप रहे हैं, पानी में खड़े हैं और बीच में उनका कपड़ा शेर लेकर के बैठा हुआ है। तो जो खादिम आया उसको भी हिम्मत नहीं हुई कि मौलाना लोगों को बुलाए, क्योंकि बीच में शेर था। भागते हुए गया हजरत से कहा हुजूर वहां तो मामला बड़ा गंभीर है। कहा क्या हुआ? बोले ये दोनों नहा रहे थे, इनका कपड़ा शेर समेट करके बैठा उनको घूर रहा। हजरत फरमाया अच्छा हमारे मेहमानों को परेशान करता, फौरन आए इसका कान पकड़ करके एक तमाचा मारा, मेरे मेहमान को परेशान करता, चल भाग यहां से। फौरन का जंगल में चला गया। हजरत ने फरमाया आइए अपने पैजामे पहनिए, कुर्ते पहनिए, टोपी लगाइए, चलिए। चलते चलते रास्ते में हजरत ने मुड़कर देखा, कहा बाबा तुम अपनी जबान सीधी करते हो, हम अपना दिल सीधा करते हैं। जो अपने दिल को सीधा करता है शेर भी उसके सामने सीधा करता है। उनका जवाब दे दिया, तुम तजवीद पढ़ के फिरत मच करके आए हो, हम पर एतराज करते हो कि इनकी फिरत सही नहीं है, तो फरमाते हैं तुमने जबान सीधी की और दिल को बर्बाद कर दिया, सुला कुंडली बन गए, इसलिए शेर से डर गए। हमने दिल को साफ किया तो शेर हमसे डर गया है, दिल को साफ करो। उन दोनों ने हजरत से कुछ नहीं कहा था, लेकिन हजरत को खबर क्यों हुई थी? दिल साफ था। जब नबी के गुलामों का हौलिया का ये आलम है तो मेरी मुस्तफा का क्या आलम होगा? सरे अर्श पर है तेरी गुजर और दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। परवरदिगार आलम हमें ऐसा ज़ौक दे दे कि हम अल्लाह ताला पर भी ईमान रखे कि मौला तू हमारे हर काम को देख रहा है और मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी यही तसव्वुर रखे कि हमारे हालात और हमारे काम मुस्तफा पर पोशीदा नहीं है। एक हदीस में फरमाते हैं हर जुमेरात को और पीर को मेरी उम्मत का सब नामे आमाल मेरी कब्र शरीफ में पेश किया जाता है और मैं उसे पढ़ता हूँ। अगर नेकी होती है तो मैं खुश होता हूँ और बुराई देखता हूँ तो मुझे बहुत रंज होता है। अब हुजूर को रंजीदा बनाना, हुजूर को तकलीफ पहुंचाना है, लोगों छोड़ दो। हमारी हालत बर्बाद इसलिए हो रही है कि रजाए मौला के खिलाफ हम काम कर रहे हैं। हमारी माँ बहनें सुने और समझें कि तुम फातिमा जहरा की तमीज हो, वो काम करो जिससे तुम्हारे आका और मौला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुश हो जाएं। आज मुसलमानों का औरतों का मुआशरा बहुत ही खराब होता जा रहा है, बेहयाइयां बढ़ती जा रही हैं, लिबास ऐसे बेहयाई के पहनती हैं, अल्लाह महफूज रखे। और सबसे बड़ी तकलीफ पूरे शरीकों को है कि आज मुस्लिम मुआशरे में पलने वाली लड़कियां जो मुसलमान माँ की गोद में पली हैं, दूध मुसलमान माँ का पिया है, लेकिन कॉलेजों और स्कूलों की तालीम ने उन्हें इतना आजाद कर दिया है कि गैरों के साथ वो घूमती फिरती हैं, होटलों में जाती हैं। आज देखो चंद सालों के अंदर सैकड़ों नहीं हजारों मुसलमान खानदान की लड़कियां, मुझे कहने दो, गैरों की शादी गैरों से निकाह करके और मंदिरों में जाकर पूछ
पूजा कर रही हैं, क्या उन माँ बाप को हैरत नहीं आती है कि इस्लाम हमको रब ने अता फरमाया, आज हम अपने मुस्लिम मुआशरे में पलने वाली लड़कियों को आजाद छोड़ दे रहे हैं, उन्हें बाइक दिला रहे हैं, मोबाइल दिला रहे हैं और गैरों के साथ घूमने की छूट दे रहे हैं, खुदा की कसम इस्लाम का दीवाना निकाल रहे हैं, ये बेहयाई करने वाले, ऐ मेरी माँ बहनों अपनी बच्चियों पर कंट्रोल करो, तहजीब इस्लामी के करीब लाओ, वरना तुम्हारे इस्लाम की बदनामी तुम इस्लाम की बदनामी का जरिया बन जाओगे। खुदा के यहाँ सबको जवाब देना है। आज रोजाना अखबारों में खबरों में हम पढ़ते हैं, एक एक शहर में चार चार पांच पांच ऐसे हादसात और केस हुए हैं। आखिर कब समझेंगी हमारी बच्चियां और कब समझेंगे ये माँ बाप जो अपनी बच्चियों को नई तहजीब का दीवाना बनाते हैं। ऐ अल्लाह के बंदो, तुम्हें दौलत में जीना नहीं है, तुम्हें सूरत और शहरों में हमेशा रहना नहीं है, कब्र की कोठरी में जाना है और रब और रसूल को मुंह दिखाना है। वहां के लिए पहले से जवाब तैयार कर लो, निपटने की हिम्मत किसी में नहीं है। आओ रब्बुल आलमीन के खौफ से अपने आप को वाबस्ता कर लो, मुस्तफा की शर्म और हया दिल में आबाद कर लो, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं हो। अल्लाह रसूल के वास्ते हाथ जोड़कर बुड्ढा कहता है, ऐ मेरी बहू बेटियों, घरों में रहना सीखो और ये जिन क्या कहते हैं जींस पैंट मोबाइल और वो तंग लिबास छोड़ो, गैरों के साथ घूमने को छोड़ो, गैर तो गैर है अपनों के साथ भी घूमने के लिए तुम्हें इजाजत नहीं देनी चाहिए। आजकल ये तहसीब बन गई है, मंगनी हो गई तो समझते निकाह हो गया, मोबाइल शुरू, रोजाना अपनी मंगेतर से गुफ्तगू, पिकनिकों में जाना, शादी ब्याह में मिला, ये सब हराम नाजायज जहन्नम का रास्ता है। जब तक निकाह ना हो जाए वो अजनबी है, उसको एक साथ बैठ करके हंसी मजाक करना तो दर्दनाक, उसे देखना भी गुनाह है। रिंग पहनाएंगे, अंगूठी पहनाएंगे, अब तो इसकी बीवी होने वाली है, अरे होने वाली है, इस तुमको इस्लाम इजाजत नहीं देता है, जब हो जाएगी तो तुम्हारे लिए छुट्टी और आजादी है। ऐ मेरे मुआशरे में रहने वाले भाइयों, इस किस्म की नापाक रस्मों को अपने मुआशरे से खत्म कर लो, मेरे मुस्तफा को बहुत तकलीफ होती है इस गंदे मुआशरे से, हुजूर फरमाते हैं बुरे काम उम्मत के देखता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है और अच्छे काम देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है। आज हमारी पूरी कौम नहुसत में लिपटी हुई है, अल्लाह इस कौम को 12 रबीउल अव्वल के सदके में अच्छी सोच अता फरमाए और नेकियों से रगबत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बला। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिही व सहाबी व आलिही व सल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, अपने फजल से अपने कर्म से इस मजलिस से खैर को कबूल फरमा ले और जो कुछ कहा गया है मौला उन तमाम बातों पर हम सबको ईमानदारी के साथ अमल करने की तौफीक दे, रबी बता फरमा मौला, हमारे मुआशरे को बुराइयों से पाक साफ फरमा दे, सुन्नत नबी पर सबको चलने की तौफीक अता फरमा, हमारी माँ बहनों को हजरत फातिमा के रास्ते पर चलने का जज्बा अता फरमा, इल आलमीन हमारी दुआओं को कबूल फरमा दे। आज मुसलमानों की हालत हिंदुस्तान में गैर से गैर होती चली जा रही है, या अल्लाह हमारे लिए मुश्किलात सामने आ रही है उन्हें दूर फरमा दे, हमारे बेचैन दिलों को चैन अता फरमा, हमारे तमाम माशरे की गंदगियों को दूर फरमा कर इस्लाम के सांचे में ढाल दे। इला आलमीन जो हमारे भाई यहाँ आए हैं उन सब पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।
हमारे मेहमान बिरादरी का एक नौजवान अचानक धौरा जी जाते जाते वो उतरा और खाई में उसका पैर चला गया, एक्सीडेंट खतरनाक हुआ। नौजवान साल बच्चा अभी उसका आज इंतकाल भी हो गया, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए। मुंबई में हमारे मुस्तफा भाई के मामू क्या नाम सिद्दीक भाई सब बीमार सीरियस हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत व सलामती अता फरमाए। और इस मजमे में जितने लोग हैं इनके घर मौला तू जानता है, जो भी बीमार है सीरियस है हॉस्पिटल में एडमिट है अपने महबूब के सदके में इला आलमीन सबको सेहत व सलामती अता फरमा, सबको रूह बसेहत फरमा दे, सबकी तकलीफों को दूर फरमा दे। या अल्लाह या रहमान हमारी दुआओं को कबूल फरमा कर हम सबको दीन दुनिया की बरकतें अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला।